हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 56, 57, 58, 59 एंड 60। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंडस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। व्रजेव सन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोरा यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधारम शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। जब नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि आपके ताजश्री वो तो हिमालय की ओर चले गए हैं और जहाँ पर हिमालय में सात धाराएं गंगा की निकलती हैं वहाँ पर अब वो बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं, दिन में तीन बार स्नान कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। अब उन्होंने जितासनो जितश्वासा प्रत्याहार षडिंद्रिय अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है आसन पर और अपनी श्वास पर हृदय प्राप्त कर लिए और हरि भावनया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन केंद्रित कर दिया है, भगवान का चिंतन करते रहते हैं और उन्होंने सद्वंश रज सत्तमो तममोला उन्होंने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का परित्याग कर दिया है, देह से मुक्त हो गए हैं, बुद्धि से मुक्त हो गए, आत्मा को समझ गए और भगवान की नित्य सेवा में अपने को लगा दिया है। अब वो केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब इतना सुना कि अच्छा वो हिमालय की ओर गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बस अब तो मैं जाऊंगा उनको लेने के लिए, वो यहाँ पर आकर सुख से रहे, अब इतनी वृद्धावस्था में नेत्रहीन माता पिता वहाँ वन में हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, भले ही मैं उनको यहाँ पर लेके आऊंगा, भले भक्ति करें, भले तपस्या करें, यज्ञ करें, लेकिन तो भी वहाँ वन में जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर ही आए। तभी नारद मुनि उनको कहते हैं नहीं नहीं, अब तुम उनकी मुक्ति के पथ में बाधा मत बनो। श्लोक नंबर 56 में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं ध्वस्त माया गुणो दर्को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ति स्थाणोरिवाचल तस्यंतरायो मै वापु संन्यस्ताखिल कर्मण दस्त माया गुणो धर को निरुद्ध करणाशय निवृत्तिताखिलाहार आस्ति स्थाणोरिवाचल तस्यंतरायो मै वापु संन्यस्ताखिल कर्मण ध्वस्त माया गुणो धर को। मतलब उन्होंने अभी माया गुण यानी प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उदर्क यानी जो परवर्ती प्रभाव है उन गुणों का निरुद्ध वो रुक गए हैं। अब मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि अब क्योंकि उन्होंने भौतिक कार्यों को छोड़ दिया है, इंद्रियों के सारे बाह्य कर्मों को छोड़ दिया है, अब उनको वापस से वो करने के लिए आप प्रेरित मत करो कि आ जाओ खाओ पियो, क्योंकि उन्होंने खाना पीना भी वहां पर बंद कर दिया था ना, खाली जल पीते थे। तो बोला उनको ये सारे कार्य रोकने पड़ेंगे, निरुद्ध करणाशय ये जो इंद्रियों तथा मन के सारे कार्य उनको रोकने पड़ेंगे, उनका लक्ष्य बहुत ही उच्च है इसलिए उनका त्याग भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और निवृत्तिता खिला आहार उन्होंने सारे जो भोजन है आहार जो है इंद्रियों का वो सब छोड़ना पड़ेगा, आस्ती स्थानों रिवाज चला और उनको एक जगह पर जड़ की तरह बैठना पड़ेगा, ऐसे क्योंकि महल में आएंगे तो फिर वही कार्यकलाप में लग जाएंगे, फिर उनका जो चित्त है ना, क्योंकि बहुत समय तक उन्होंने भौतिक वस्तुओं के अंदर अपना चित्त लगाया है, राज्य की ओर आकर्षण अभी मुश्किल से तो उनका छूट रहा है, आप वापस उनको लेकर आओगे तो फिर उनके आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। इसलिए तस्यांतरायो मैवा तस्यांतर मतलब वो कह रहे हैं कि उसके अंतरायो का मतलब होता है विघ्न या बाधा आप मत डालो, है ना, मैवा भू आप ऐसा मत करो, आप उनके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा मत बनो, संन्यासाखिल कर्मण और उनको मुक्ति प्राप्त करने के लिए विरक्ति संन्यस्त यानी समस्त अखिल कर्मण जो भी भौतिक कर्म है उन सारे कर्मों को त्यागना पड़ेगा, उनसे विरक्ति करनी पड़ेगी, तभी तो भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। आप सोचते हो उसको यहाँ पर लेकर आ जाए हम वापस से और राज्य में भोगते रहेंगे, आनंद भी करते रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें? नहीं नहीं युधिष्ठिर, भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, प्रभु को हे सनातना कृष्ण रतन धना अनेक जन्म मिल आए रे। भगवत प्राप्ति कृष्ण रत्न। अब हम देखते हैं भक्तों, इस भौतिक जगत में यदि हमें कोई साधारण रत्न भी प्राप्त करना होता है तो उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर डायमंड खरीदना हो सच्चा हीरा तो बहुत महंगा मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए बहुत बहुत धन जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया होता है वो देना पड़ता है। तो यह कृष्ण नाम का धन जिससे बड़ा और कोई धन नहीं है क्या बहुत सरलता से मिल जाएगा? भले श्री प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि चैंटिंग, ईटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग, इसी से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये केवल नए भक्तों को आकर्षित करने के लिए है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भक्ति बहुत कठिन है, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अभी शुरू शुरू में हम भी यही कहते हैं सबको कि भाई आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, भक्ति कितनी सरल है, चैंटिंग, ईटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, यही तो है भक्ति। लेकिन फिर जब भक्ति में आएंगे तो धीरे धीरे बोलेंगे भाई नहीं, आपको चार नियम का कठोरता से पालन करना होगा, मांस नहीं खा सकते, जुआ नहीं खेल सकते, शराब नहीं पी सकते, पर स्त्री और पर पुरुष का संग नहीं कर सकते। वो बोलेगा चलो ठीक है, अब कृष्ण प्राप्ति करनी है तो चार नियम पालन करेंगे। फिर आगे जाएंगे, बोला 16 माला जप करना अति आवश्यक है, आपको किसी भी दिन अपनी 16 माला में से एक भी नहीं छोड़नी है। बोला चलो ठीक है आगे, फिर थोड़ी भक्ति करें, आगे आएंगे और आगे आएंगे, फिर उसको बताएंगे कि देखो मंगला आरती बहुत जरूरी है, प्रभात साधना के अतिरिक्त तो समझो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, और एकादशी तो आपको अवश्य रखनी है, वो भी इतनी जिस तरह से हम रखते हैं वैसे नहीं, जितनी तपस्या कर सकते हो एकादशी में करो, जितनी माला कर सकते हो उतनी करो। फिर आगे बोला अध्ययन किए बगैर क्या भक्ति, आप शास्त्र अध्ययन नहीं करते, आप शास्त्र श्रवण नहीं करते, अभी तक भगवत गीता भागवतम को नहीं समझे हो तो क्या भगवान को समझो। शुरू में बोला चैंटिंग, ईटिंग और फेस्टिंग, फीस्टिंग और डांसिंग, और आगे एक एक कदम पर एक एक बहुत बहुत कठिनाइयां हैं भक्ति के मार्ग में भक्तों। और जब सब कुछ कर लो उसके बाद बोलो तुम भक्त कहलाने के योग्य नहीं हो, तुम प्रचार नहीं करते, भगवान के शास्त्रों का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के इन श्लोकों का, शब्दों का तुम्हें प्रचार करना चाहिए, वरना तो तुम बहुत ही एहसान फरामोश भक्त हो, भगवान के एहसानों का कोई कर्ज नहीं चुका रहे तुम्हें। फिर आगे बताते हैं कि भाई तुम्हें विग्रह सेवा करनी है, आरती करनी है, ऐसे पूजा करनी, फिर आखिर में कहेंगे कि 24 घंटे में एक मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के और कुछ कहो। तो वास्तव में यही बात यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि बस करो आप युधिष्ठिर, बहुत भोग भोग लिया उन्होंने, अब उन्हें राज्य में वापस मत डालना, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन सब का त्याग किया है और कृष्ण प्राप्ति करने के लिए उन्हें विरक्त जीवन गुजारना चाहिए। आप उनकी इस भक्ति के और कृष्ण प्राप्ति के मार्ग में विघ्न मत डालो। अनुवाद देखिए, उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रिया के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों को परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, योग विधि से धृतराष्ट्र सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से निषेधावस्था प्राप्त कर चुके थे। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से भक्ति योगी पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा का शिकार होता रहता है, किंतु योग विधि से ऐसे झूठे भोग से बचा जा सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्री सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है। आंखों को दृश्य चाहिए, कर्णों को शब्द चाहिए, जीवा को टेस्ट चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से मार पड़ती रहती है। उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने के प्रयास से उन्हें विचलित ना करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। प्रकृति के गुणों की विभिन्न क्रिया विधियां, किंतु प्रकृति के गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण हैं, जो परम हैं। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा उसका प्रभाव अभिन्न है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर भौतिक गुण से विभेदित किया जाता है। प्रकृति के गुणों से पूर्णतः अवरोध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश कर पाता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति निर्गुण है, जिसे ब्रह्म के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब तक हमारे सामने भौतिक वस्तुएं इतना भौतिक वस्तुओं से हम इतना जुड़े रहेंगे, तब तक वो वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। भौतिक वस्तुएं होंगी, सारी इंद्रियां अपने भोजन की तलाश कर रही होती हैं, और यदि हम इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें वस्तुएं प्रदान करते जाएंगे तो भला उनका आकर्षण कैसे समाप्त होगा। हमें भौतिक वस्तुओं से अलग होकर आध्यात्मिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होना होगा। श्रवण करना है तो भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करना होगा। यदि नेत्रों को दृश्य चाहिए तो भगवान के दर्शन देने होंगे। यदि जीवा को कुछ खाना है तो भगवान का प्रसाद अर्पण किया हुआ खाना खिलाना है, और यदि कुछ बोलना है तो केवल भगवान के विषय में। यदि कुछ स्पर्श करना है तो केवल भक्तों के श्री चरणों को। तो यदि हम उनको आध्यात्मिक वस्तु प्रदान करेंगे तो फिर भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं वो सब दूर हो जाएंगे और वो विशुद्ध सत्व में आ जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति अतैव भक्ति निर्गुण है। फिर भक्ति जो है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर में नहीं है, वो इन सब से ऊपर है, निर्गुण है, और जिसे ब्रह्म के प्रत्येक संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवान के साथ प्रत्येक संपर्क यदि किया जाता है तो फिर हम उस निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर देते हैं, विशुद्ध सत्व अवस्था को। आगे नारद मुनि कहते हैं कि आपको फिर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे वो। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, कोई भी उनकी भौतिक इच्छा नहीं रही है, जो भी भौतिक कार्य है उनका परित्याग कर दिया। अब वे बस 5 दिन के बाद अपना शरीर त्याग देंगे। वे कहते हैं सवा उद्यतनात्राचन परतः पंचमय हनि कलेवरम हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। सवा उद्यतनात्राचन परतः पंचमय हनि कलेवरम हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। सवा उद्यतनात्, सवा मतलब वो संभव है, मतलब सवा संभव है कि उद्यतनात् राजन, ए आज से, आज के बाद, ए राजन परतः पंचमहिना, कि आज से पांच दिन, पांचवा दिन जब आएगा तो क्या कहेंगे, अहिनी उस दिन में, कलेवरम हास्ति स्वम, कलेवर जो है अपना, हास्ति आसियति का मतलब होता है छोड़ देंगे, स्वम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, मतलब अब वो अपनी इच्छा से अपने कलेवर को पांचवें दिन छोड़ देंगे, तच्च भस्मी भविष्यति, और जलकर भस्म हो जाएंगे। अनुवाद देखिए, हे राजन बहुत संभव है कि आज से पांचवें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योगी शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता ना थी। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर राख हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही होगी, योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को अपनी ही अग्नि में भस्म करके इच्छित लोक को प्राप्त करता कर सकता है। तो यहाँ पर नारद मुनि हमें, सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें ये बता दिया कि भस्मी भविष्यति, वो उनका कलेवरम हास्यति स्वम, अपना अपनी इच्छा से अपना कलेवर छोड़ देंगे और कलेवर जो है वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसा चाहते थे कि अभी वो पांचवें दिन भी अगर मरने वाले हैं तो भी मैं उनको लेके आऊं ना, उनके शरीर को तो एटलीस्ट लेके आऊं, अंतिम क्रियाकर्म करवाऊंगा। तो फिर तभी उन्होंने, नारद मुनि ने उनको बताया कि नहीं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, उनका जो शरीर है वो उनके अपनी अग्नि से, योग अग्नि से ही भस्म हो जाएगा। और किस तरह से होगा, वो कहते हैं कि त्युः पत्नी सहूटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहूटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति कि दह्यमाने मतलब जल जाएंगे अग्नि, अग्नि भी मतलब अग्नि के द्वारा देही पत्नी सहुटजे। अब क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि ठीक है, अगर धृतराष्ट्र जी जल जाएंगे तो भी मैं उनकी पत्नी माता गांधारी को लेकर, बोले नहीं, आपको माता गांधारी के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्यु पत्नी सहुटजे, उनका पति जब जलेंगे अपनी योग अग्नि से तो उनको देखकर उनकी पत्नी भी और उनके साथ साथ उनका जो घर है, सहोट हट हट बोलते हैं, जो झोंपड़ी होती है ना, कुटिया, उसमें भी वो भी जल जाएगा। बहिस्थिता पतिम साध्वी, मतलब पहले वो बाहर होगी लेकिन जब देखेगी कि मेरा घर भी जल रहा है, मेरा पति भी जलता है, तो तमग्नि मनु वेक्षते, उसको देखकर वो भी उसके अंदर आके अग्नि में प्रवेश करके वो भी जल जाएगी। यानी कि धृतराष्ट्र महाराज भी जल जाएंगे, उनकी पत्नी भी, और वो जो उनका जहाँ पर झोंपड़ी में रह रहे हैं वो भी जल जाएंगे। अनुवाद देखिए, वे अपनी पत्नी को जो अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत भस्म हो जाएगा, बाहर ध्यानमग्न होकर देखते हुए वह साध्वी पत्नी अग्नि में प्रवेश करेगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गांधारी आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पूर्ण कुटी समेत जल रहे हैं तो वे निराश हो गए। उन्होंने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ा था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी, अतएव वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती प्रथा कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती प्रथा का शुद्ध विधि से पालन कर पाना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता है। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती प्रथा का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई, तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतएव राज्य नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी से महाराज युधिष्ठिर अपनी विधवा ताई के पास जाते जाते रुक गए। पहले उन्होंने सोचा कि अभी मैं ठीक है, मेरे ताजश्री की मृत्यु हो जाएगी तो मैं ताई गांधारी जी को लेके आऊंगा। लेकिन उन्होंने बताया नारद मुनि ने, गांधारी जी भी तो जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि धृतराष्ट्र जी और गांधारी माता तो योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे, फिर मैं अपने ताजश्री विदुर को तो लेकर आऊंगा, वो तो नहीं भस्म होंगे ना। तब नारद मुनि बता रहे हैं, विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरुनंदना हर्षशोक युतस्तस्मात् गन्तातीत निशीवक विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरुनंदना हर्षशोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थनि शिवक विदुरस्तु तदाश्चर्य। विदुर भी तू, लेकिन तत् वह घटना यानी आश्चर्य, वह आश्चर्यमय घटना जब वो देखेंगे निशाम्य, तो हे कुरुनंदन उनको बहुत हर्ष शोक युत, उनको बहुत हर्ष होगा। वास्तव में विदुर जी का जो प्रयास था वो सफल हो जाएगा। उस समय जब धृतराष्ट्र के सिर से योगाग्नि निकलेगी और उस योगाग्नि की अग्नि में वो भस्म हो जाएंगे, कितना बड़ा सक्सेस है। योगी जन बहुत बहुत प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण के लिए जब वो अपनी योग अग्नि के अंदर अपने शरीर को भस्म करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं बहुत हर्ष होगा उनको, और वास्तव में उनको ये सोच कर कि कितनी शुभ गति हुई है, इससे बहुत प्रसन्नता होती है हुई विदुर जी को। लेकिन साथ में वे कहते हैं हर्ष शोक, साथ में उनको दुख भी हुआ कि मेरे बड़े भाई थे। अब भले हम कितना ही आत्मा का ज्ञान क्यों न जानते हो, लेकिन ये जानते हैं कि इस जीव का हमारे इस भौतिक शरीर के साथ संबंध था, और उनके जाने के बाद अब उनकी कमी और कोई पूरी नहीं कर सकेगा। तो उनको दुख भी हुआ, और उस दुख से युतस्तस्मात उस स्थान से गंता तीर्थ निशेवक, फिर वो दूसरे तीर्थ स्थान में चले गए। और फिर विदुर जी प्रभास क्षेत्र में चले गए, जहाँ पर यादवों ने शरीर छोड़ा था। उसी स्थान में विदुर जी ने बाद में शरीर छोड़ा, लेकिन अभी तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं कि तब हर्ष तथा शोक से युक्त अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान का त्याग कर देंगे। आप जाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके पांचवें दिन में तो वो समाप्त हो जाएंगे, और फिर तब विदुर जी भी वहां से चले जाएंगे दूसरे तीर्थों में। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को वांछित गति प्राप्त हुई, अतएव यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। भले योगिक क्रिया के द्वारा उन्होंने उनकी मुक्ति करा दी, लेकिन शुद्ध भक्त जो भगवान का होता है, जिसे उसे वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है, वो तो उसे प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हर्ष शोक युतस्ताव। तो आगे कहते हैं, विदुर ऐसा ना कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखता था जो भगवान के भक्त थे। वैश्यों के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक है। अब वो क्योंकि हमेशा से वैष्णवों का अपराध करते थे, इसलिए उनके लिए शुद्ध भक्त बनना बहुत कठिन है। अब इससे हमें ये समझना चाहिए, भले ही हम शुद्ध भक्त नहीं बने, भले ही हम भगवान की अच्छी भक्ति नहीं करें, लेकिन अगर हम लोगों ने भक्तों का अपराध किया तो भगवान कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत ही भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित होता है, अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे विदुर तो बहुत कृपा करना चाहते थे अपने भाई के ऊपर, परंतु श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बात बता रहे हैं, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। अब आपको कृष्ण भक्ति कोई देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए और भगवान को आप पर कृपा करने के लिए विवश होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया था कि भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान करते। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ, मुक्ति तो प्राप्त हुई परंतु मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और आगे कहते हैं, ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त होती। बहुत बहुत बार जब सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और जीव को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यह ब्रह्म में जाकर तदात्मय नहीं होना है, मुझे प्रेम प्राप्त करना है, क्योंकि प्रेम प्राप्त किए बगैर आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, फिर भले उसे सायुज्य मुक्ति क्यों न मिल जाए, वो तड़पने लगती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये जो भक्ति प्राप्त हुई है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। हमने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कार्य किया होगा, कौन सी भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी गुरु महाराज की शुद्ध वैष्णवों की कृपा है कि हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ता है, कृष्ण के विषय में श्रवण करने का दिल करता है, कृष्ण के लिए कुछ करने का दिल। कितना कर पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हृदय के अंदर इच्छा अवश्य है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। वास्तव में स्थिति बहुत बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी वो पुण्य कर्म करता है, और जिनके पाप कर्मों के समस्त फल खत्म हो गए होते हैं, पाप कर्मों की सारी जड़े खत्म हो गई होती है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो ये जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल कृष्ण की कृपा है, और मेरा नाम भजन करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वो कोई साधारण नहीं होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती कृष्ण की भक्ति, कितना आसान है, कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, बस इजी है, नाम जप करना। लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग को बताते हैं, किसी को समझ में आती नहीं बात, उनको नहीं आएगी, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत पुण्य एकत्रित करते। भगवान तो गीता में कह कह के थकते गए कि बहुनाम जन्म नामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, हजार जन्मों के बाद कोई ज्ञानी बनता है जो मेरे पास आ जाता। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेतित। तुम क्या समझते हो, ये जो कृष्ण है उसकी भक्ति करना इतना सरलता इतनी सरल है कि वो किसी को भी प्राप्त हो जाएगी? नहीं, किसी को प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए बहुत बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बहुत शुद्ध भक्तों का सानिध्य तथा आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो धृतराष्ट्र उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे, वो भगवान की भक्ति को डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने सदैव भगवान के भक्तों को कष्ट दिया था। लेकिन फिर भी उनको सायुज मुक्ति प्राप्त हुई और ये भी महात्मा विदुर जी के सानिध्य का असर। आगे नारद मुनि कहते हैं, विसूत गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सहतम्भुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छु च। इत्युच्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सहतम्भुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छु च। इत्युक्त्वाधारुहत् स्वर्गम् नारदः सहतम्बुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छु च। अब क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का शोक समाप्त हो गया था धृतराष्ट्र महाराज के ओर से, और एक तो पहले से ही नारद मुनि ने उन्हें बहुत बहुत शिक्षा दी कि आपको उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और उनकी इतनी शुभ गति के विषय में भी बताया और ये भी बता दिया कि विदुर जी भी अब तीर्थाटन करने के लिए चले गए। उतना कहने के बाद इत युक्त्वा यानी इतना कहने के बाद संबोधित करने के बाद आरोहत स्वर्ग नारद सहतम्बुरो, नारद जी अपने तंबूरों के साथ, उनका तंबूरा है ना जो बजाते रहते हैं वो हमेशा साथ में रखते हैं। वास्तव में इसे बताते हैं कि भक्तों को अपने इंस्ट्रूमेंट साथ में रखने चाहिए। पता नहीं कब कहाँ पर भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने का समय मिल जाए तो फिर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ना, कीर्ताल होनी चाहिए, मृदंग होना चाहिए, जब जहाँ समय मिले वहां पर शुरू हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जब श्री रूपा जी गए थे पाश्चात्य देश में तभी वो अपनी कीर्ताल को लेके गए थे, और कभी जाऊंगा तो हर जगह पर कीर्तन करने जाऊंगा तो मैं कीर्ताल कहाँ से लाऊंगा, तो अपना तो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, अपने साथ हमारी माला होनी चाहिए, जहां पर भी जाएं जब करना है तो माला सदैव अपने साथ रखनी चाहिए। और इस तरह अगर हम कीर्तन करते हैं कीर्ताल होनी चाहिए हमारे साथ, और हम हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, ये हमारे हथियार हैं, ये हमेशा हमारे साथ होंगे। तो नारद मुनि सदैव अपने साथ तंबूरा रखते हैं और वो अपने तंबूरे के साथ वो चले गए अभी स्वर्ग में। युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्युता, और युधिष्ठिर महाराज ने जब उनका उपदेश सुना, वचस्तस्य उनके उपदेश को सुना, तो हृदि कृत्वा उन्होंने हृदय के अंदर उसको धारण किया, अजहात उच्छुत उन्होंने अपने शोक को त्याग कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी थे ना, तो अब उनका दुख समाप्त हो गया। अनुवाद देखिए, ऐसे कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश स्वर्ग लोक में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सारे शोक से मुक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्री नारद शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते किसी भी लोक में पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतएव उनके विचरण करने की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोकों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हों, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि दूसरे ग्रहों में जाने के लिए कोई यांत्रिक विधि की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। वैसे तो हर ग्रह में जाने के लिए एक अलग शरीर की आवश्यकता होती है ना। जब जैसे हम इस पृथ्वी लोक में रहते हैं तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है, क्योंकि पंच तत्व से मिलकर यह शरीर बनता है, तो पृथ्वी तत्व अधिक है जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, टिक सकते हैं। लेकिन देवताओं के जो लोक हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग तत्व होते हैं। अब देवता जो होंगे ना, वो पृथ्वी पर आएंगे ना, तो भी कभी पृथ्वी पर पैर नहीं जमा सकेंगे, क्योंकि उनके शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं होता है, आकाश तत्व होता है। तो वो आकाश में उड़ सकते हैं, देवताओं को उड़ने का आता है, मतलब उड़ने, उनका शरीर ऐसा ही प्राप्त है कि वो उड़कर, मतलब उनको चलने की आवश्यकता। ये तो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं, वो तो उड़ते हैं, फ्लाई करके पहुंच जाते हैं। और जैसे जो सूर्य लोक में जीव रहते हैं, उनके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, जो समुद्र में रहते हैं उनके शरीर में जल तत्व ज्यादा होता है। वो देखो, समुद्र के प्राणियों को, मछलियों को यदि हम निकालेंगे तो पृथ्वी पर नहीं रह सकेंगे। तो हर एक जगह पर रहने के लिए एक पर्टिकुलर शरीर की आवश्यकता होती है। परंतु नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ही, एकमात्र वाहिद वो व्यक्ति हैं जो हर जगह पे जा सकते हैं। पृथ्वी पर जाना चाहे वहां पर भी आनंद से रहते हैं, और स्वर्ग में जाना चाहे वहां पर भी जाते हैं, नरक में जाना चाहे तो वहां पर भी चले जाते हैं। और सबसे बड़ी भक्तों बात यह है कि वो यदि भगवान के गौलोक धाम में जाना चाहे तो वहां पर भी वो जा सकते हैं। इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि वो नहीं सब जा सकते, लेकिन नारद मुनि जा सकते हैं, क्योंकि हमने नारद मुनि के पिछले जीवन में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने शुद्ध भक्तों की सेवा की थी। तो शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमें अवश्य वो गति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, ताकि हमें भी भगवत कृपा प्राप्त हो सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हरे कृष्ण।